हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। और तभी अचानक उसके दादा महाराज की आवाज वहां गूंजी। उसके दादा महाराज अमन से कह रहे थे, शाबाश बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अब अपनी पत्नी, अपने परिवार के साथ साथ पूरे जिन्नातों का ध्यान रख सकते हो, और तुम अपने सभी जिन्नों पर भी इसी तरह से नजर रखोगे और किसी को भी कुछ गलत नहीं करने दोगे। अमन ने सबसे पहले अपने दादा महाराज को गले से लगा लिया, क्योंकि उसके दादा महाराज जब से कैद हुए थे, अमन को ऐसा लगने लगा था मानो वो अनाथ हो गया हो। तभी उसने दादा महाराज की ओर देखते हुए कहा, महाराज, मेरी बीवी तारा। दादा महाराज ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत जल्द वो तुम्हारे पास आ जाएगी, तब तक तुम अपना बाकी का काम खत्म कर लो और इस बात का पता लगाओ कि तुम्हारे सातों बावर्ची आखिरकार कहाँ हैं। जैसे ही दादा महाराज ने ये कहा, अमन ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। उसके दादा महाराज गायब होकर सीधे अपने पेड़ की समाधि में चले गए। पेड़ की समाधि में जाकर उन्हें जल्दी ही काव्या के वहां होने का एहसास हो गया। काव्या ने भी मुस्कुराकर दादा महाराज को सलाम किया और कहने लगी, दादा महाराज, अब आप कुछ भी कीजिए और तारा को पृथ्वी लोक लेकर आइए, क्योंकि अगर वो वहां रहेगी तो इससे उस राक्षस की शक्तियां बढ़ती जाएंगी और वो वक्त से पहले ही होश में आ जाएगा। दादा महाराज ने काव्या की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने कठोर तप के द्वारा जिन्नातों के वंशज को पहले पृथ्वी पर लेकर आएंगे, उसके बाद तारा परी जादुई फल खाकर खुद ब खुद इस पृथ्वी पर आ जाएगी। जैसे ही दादा महाराज ने ये कहा, काव्या मुस्कुराने लगी। जल्दी ही काव्या ने दादा महाराज से इजाजत ले ली, मैं अब यहाँ से वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन दादा महाराज ने उसे रोक लिया और कहने लगे, तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तुम जब तक वापस नहीं जाओगी तब तक तारा यहाँ नहीं आ पाएगी। सोनल परी को दादा महाराज की बातों का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन वो ये सोचकर रुक गई कि अगर उसे कुछ दिन और इस पृथ्वी पर रहने का मौका मिल रहा था तो वो उसे हाथ से नहीं जाने देगी और इस पृथ्वी पर ही रहेगी। ये सोचते हुए उसने खुशी खुशी दादा महाराज की बात मान ली और मन ही मन में तारा से बात करने का फैसला ले लिया, ताकि तारा को सारी बातों के बारे में बता सके। वहीं दूसरी ओर अमन जल्दी ही अपने घर पहुँच चुका था। आज उसके दिल पर एक अजीब तरह का दुख छाया हुआ था। जैसे ही करिश्मा जी ने अमन को इतनी बुरी हालत में देखा, वो परेशान हो गई और कहने लगी, बेटा क्या हुआ है तुम्हें, और तुम तो तीनों जिन्नातों को ढूंढने में कामयाब हो गए हो, तो फिर इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर अगर तारा बेटी को लेकर मायूसी है तो मेरे यकीन करो, परमात्मा ने ही उसकी राहों में मुश्किलें पैदा की होंगी, जिसकी वजह से वो तुम्हारे पास नहीं पहुँच पाई है। लेकिन अब जो परमात्मा की दी हुई शर्तें पूरी हो चुकी हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है तारा बेटी तुम्हारे पास जरूर आएगी, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अमन ने करिश्मा जी की बात सुनी और उनकी ओर देखकर कहने लगा, नहीं मॉम, आप गलत समझ रही हैं, मैं तारा को लेकर परेशान नहीं हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी तारा मेरे पास जल्द से जल्द लौट आए, लेकिन मॉम, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अभी जिन महाराज बनने के लायक नहीं हूँ। भले ही मैं अभी पूरी तरह से जिन महाराज नहीं बन पाया हूँ, लेकिन मेरे जिन इस तरह से इंसानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और इस तीसरे जिन ने तो सारी हदें पार कर दी थी, कहीं ना कहीं ये देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और अगर परमात्मा मुझे मेरा ध्यान इन जिन्नों की ओर आकर्षित नहीं करते तो मैं तो अपनी इसी तरह से जिंदगी जीता रहता और तारा को ढूंढने में बिजी रहता। जैसे ही अमन की बातें करिश्मा जी ने सुनी, वो थोड़ी सी हैरान हो गई और फिर अमन का हाथ पकड़कर उसे समझाने की कोशिश करने लगी, बेटा, इतने इस दुनिया में इंसान नहीं है जितने इस दुनिया में जिन है, तुम सुन रहे हो मेरी बात, इतने इस दुनिया में इंसान नहीं है जितने इस दुनिया में जिन है, और कब कौन जिन क्या करता है इसके बारे में किसी को नहीं पता है। हाँ, तुमने ये बात ठीक कही कि जिन महाराज को इस बात का पता होना चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे, अभी तुम्हें जिन महाराज कब क्या करते हैं उसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं है, और मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें धीरे धीरे जानकारी हो जाएगी। तभी अमन ने करिश्मा जी से कहा, लेकिन मॉम, उस तीसरे जिन ने मुझे ये कहा है कि मेरे जो सात जादुई बावर्ची है उन्होंने उसे इंसानी मांस खाने की आदत लगाई है। जैसे ही करिश्मा जी ने ये सुना, वो हैरान हो गई और कहने लगी, तुम किन बावर्चियों की बात कर रहे हो? तुम उन जादुई बावर्चियों की बात कर रहे हो जो जिन्नातों की दावत का खाना अरेंज करते हैं। अमन ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तब करिश्मा जी कुछ सोचने लगी और कहने लगी, लेकिन तुमने तो उन सातों जादुई बावर्चियों को वरदान दिया था कि वो कुछ समय तक इंसानों के बीच जाकर रह सकते हैं, साथ साथ तुमने उनसे वादा भी लिया था कि वे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर उन बावर्चियों ने इस तरह से इंसानी मांस खाना और सफेद जिन को कैसे सिखाया है, और ये कब किया होगा, और कैसे, और कौन तुम्हारे हुक्म के खिलाफ गया होगा? तब अमन कुछ सोचते हुए बोला, मुझे लगता है हमें एक बार फिर जिन्नातों की दावत करनी चाहिए, और उस जिन्नातों की दावत में वे बावर्ची जरूर आएंगे। मैं जानता हूँ कि ये दावत 100 सालों में एक बार होती है, लेकिन अब मैं जिन महाराज हूँ तो मैं जब चाहूँ ये दावत करवा सकता हूँ। आप एक काम कीजिए, हवेली चलने की तैयारी कीजिए, हम लोग गाँव जाएंगे और वहाँ जाकर पुरानी हवेली में जिन्नातों की दावत करेंगे। जैसे ही अमन ने ये कहा, करिश्मा जी हैरान हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अमन की बातों में दम नजर आने लगा था कि अगर उन्हें वाकई उन जादुई बावर्चियों को ढूंढना है तो उन्हें जिन्नातों की दावत करनी ही होगी, क्योंकि जब जब जिन्नातों की दावत होती है उसमें शुरू से ही वे सात बावर्ची ही खाना बनाते आए थे। इसका मतलब साफ था, उन सातों बावर्चियों को उस दावत में आना ही होगा और उसके बाद अमन आसानी से उन लोगों में से उस जादुई बावर्ची को ढूंढ निकालेगा जिसे इंसानी मांस खाने की आदत पड़ चुकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अमन को इस बात का डर था कि ना जाने उन जादुई बावर्चियों ने कितने ही इंसानों का मांस खाया होगा और खासकर लड़कियों का, वो भी उनके नाजुक जगह से। जैसे ही अमन ने ये ऐलान किया कि वो अब जिन्नातों की महादावत करेंगे, तब अमरेंद्र जी उसकी बात सुनकर वहाँ आ गए और कहने लगे, बेटा एक बार फिर सोच लो, ये एक बहुत बड़ा फैसला है और तुम्हें बिना दादा महाराज के फैसला नहीं लेना चाहिए और मुझे लगता है कि अब हमें तुम्हारे दादा महाराज से मिलने के लिए बगीचे में जाना चाहिए। जैसे ही अमरेंद्र जी ने ये कहा, करिश्मा जी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगी और अमन ने मुझसे कहा, ठीक है मैं भी चलता हूँ आप लोगों के साथ। ऐसा कहकर वो जल्दी ही बगीचे की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं सोनल परी मन ही मन में तारा परी से बातें करने लगी थी और तारा परी को मन ही मन में की गई बातों के द्वारा उसने ये बता दिया था कि अमन ने तीनों जिन्नातों को ढूंढ निकाला है और अब तारा परी एक बार फिर अपना तप शुरू कर सकती है और उसके बाद उसे पूरी उम्मीद है उसके दादा महाराज उसकी मदद जरूर करेंगे। जैसे ही तारा परी ने ये सुना उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और जल्दी ही उसने एक बार फिर दादा महाराज को बुलाने का कठोर तप करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर दादा महाराज को जैसे ही इस बात का आभास हुआ कि तारा परी कठोर तप करके उन्हें बुला रही है, तब दादा महाराज की आत्मा निकलकर सीधे परीलोक पहुंच चुकी थी। जैसे ही तारा परी ने दादा महाराज की आत्मा को अपने परीलोक में देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई
और कहने लगी, दादा महाराज मेरी मदद कीजिए, आप तो मेरा सारा सच जानते हैं, दादा महाराज अब आपको ही मेरी मदद करनी होगी। मेरे कुलगुरु ने साफ साफ कहा है कि मैं केवल ये विशेष तरह का जादुई फल खाकर पृथ्वीलोक जा सकती हूँ, लेकिन मेरे पेट में पल रहा जिन्नातों का वंशज पृथ्वीलोक नहीं जा सकता है। आपको मेरी मदद करनी होगी, मैं अपने बच्चों के बिना पृथ्वीलोक नहीं जाना चाहती, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अभी तक मेरा बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो उसके अंदर अभी इतनी शक्तियाँ नहीं है कि वो अपनी माँ की मदद कर सके। जैसे ही तारापरी ने ये कहा, दादा महाराज मुस्कुराते हुए तारापरी की ओर देखने लगे और कहने लगे, तारापरी जो कुछ भी घटनाक्रम किसी के भी साथ होता है, चाहे वो जिन हो, इंसान हो, परी हो, परमेश्वर हो, वो सब प्रकृति का रचा हुआ खेल होता है जिसमें सभी उसके मोहरे होते हैं और ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है ये तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ प्रकृति ने किया है जो कि तुम्हारे कर्मों में लिखा हुआ था। अभी फिलहाल अगर ये बात सच है कि तुम परीलोक से जिन्नातों के वंशज के साथ पृथ्वीलोक नहीं आ सकती हो, लेकिन हम जिन्नातों के वंशज को अपने साथ लेकर जा सकते हैं, उसके बाद तुम विशेष तरह का जादुई फल खाकर पृथ्वीलोक आ सकती हो। जैसे ही दादा महाराज ने ये कहा, तारापरी के माथे पर बल पड़ गए, वो उनकी ओर हाथ जोड़कर देखने लगी और कहने लगी, दादा महाराज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं, मेरे पेट में है, मेरे साथ नहीं है, तो आप जिन्नातों के वंशज को कैसे लेकर जा सकते हो। तभी दादा महाराज ने अपने कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए तारापरी के ऊपर फूंकना शुरू कर दिया और देखते ही देखते तारापरी के पेट में से एक नीले रंग का गोल सा घेरा निकलकर दादा महाराज के हाथों में आ गया। जैसे ही तारापरी ने ये देखा उसने जोरों से एक चीख मार दी और वो कहने लगी, दादा महाराज ये क्या किया आपने, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो आप इस तरह से मेरे बच्चे को मेरे पेट से कैसे निकाल सकते हैं। नहीं दादा महाराज ये आपने क्या किया, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे की जान तो नहीं जाएगी, आपने क्या किया। तारापरी एकदम से ही अपने बच्चे को नीले रंग के घेरे में देखकर बुरी तरह से रोने लगी और वो चौंक गई। तभी दादा महाराज तारापरी की ओर देखते हुए कहने लगे, हमने तुम्हें कहा ना, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, एक बार तुम वो जादुई फल खाकर परीलोक से पृथ्वीलोक आ जाओ, उसके बाद हम एक बार फिर जादू विधियों के द्वारा इस बच्चे को तुम्हारे पेट में वापस प्रवेश करा देंगे। जैसे ही दादा महाराज ने ये कहा, तारा की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं और उसने अपना एक हाथ अपने पेट पर लगाकर देखा, उसका पेट उसे बिल्कुल खाली नजर आने लगा और ये खालीपन उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था, लेकिन वो देरी नहीं करना चाहती थी। जल्दी ही उसने दादा महाराज से विदा ली और कहने लगी, मैं अभी रानी माँ के पास जाकर वो जादुई फल खा लेती हूँ और सीधे पृथ्वीलोक आ जाऊंगी, मुझे पूरी उम्मीद है दादा महाराज मेरे पृथ्वीलोक आने के बाद मेरे बच्चे को मेरे जिस्म में वापस प्रवेश करा देंगे। जैसे ही तारापरी ने ये कहा, दादा महाराज तारापरी को ढेरों आशीर्वाद देते हुए गायब हो चुके थे और तारापरी सीधे वहां से अपनी माँ यानी कि रानी माँ के पास चली गई और जो कुछ भी आज हुआ था उसने सारी बातें अपनी माँ यानी कि रानी माँ को बता दी। रानी माँ ये सुनकर बहुत ही खुश हो गईं और जल्दी ही उसने तारापरी को वो फल दे दिया। फल खाने से पहले तारापरी ने सबसे विदा ली और एक आखिरी बार उस राक्षस के कक्ष में गई और वहां जाकर कहने लगी, बहुत शौक था ना तुम्हें मेरी आवाज़ सुनने का और मुझे तड़पाने का और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जाने का,
अब मेरी बात ध्यान से सुन लो हे राक्षस, ठीक 4 महीने के बाद मैं वापस आऊंगी और इस बार मैं तुम्हें खत्म करने का हथियार अपने साथ लेकर आऊंगी और तुम्हारा नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगी। तुम देखना, मैं तुम्हें कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। अब तुम तारा को कभी भी नहीं पा पाओगे। ऐसा कहकर तारा परी रानी माँ से विदा लेकर और बाकी की परियों से विदा लेकर वो फल खाने लगी और वो फल खाने के बाद अचानक से ही तारा परी का जिस्म वहाँ से गायब होने लगा।